थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पत्रस की पहली पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है दुखों के मध्य आशा। श्रोताओ, हमें उम्मीद है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो चलिए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित होते हैं, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि शमौन पत्रस, जो मुख्य शिष्य माना जाता था, उसे न तो घमंड था और जैसा कोई सोचे वह एक गंवार मछुआरा भी नहीं था, क्योंकि वह ऐसे गुण विषयों की चर्चा करता है जो परमेश्वर के भेद हैं और साधारण मनुष्य की बुद्धि के परे हैं। जी हाँ, पत्रस ने प्रभु यीशु के साथ समय बिताया था, उसकी क्रूस की मृत्यु देखी थी, उसका पुनरुत्थान देखा था और बिना सोचे समझे बोलने वाला पत्रस पहला व्यक्ति था जिसने पेंतिकोस्त के दिन प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया था। हम इन्हीं विषयों को देख रहे थे। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय एक उसके तीन पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपके वचन पर मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए रेडियो के साथ में बैठे हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, हर एक प्रकार की बुराइयों से, बुरी संगति से, शैतान के छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें। हमारी प्रार्थना है इस समय जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, पिताजी आप उन पर दया दृष्टि करें, उन्हें स्पर्श करें, उन्हें चंगाई दें, छुटकारा दें, शांति दें, ताकि प्रत्येक जीवन आप में धन्य होने पाए। आज के वचन पर अपनी आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पहला पत्रस की पत्री एक अध्याय उसके तीन पद को पढ़ते हैं। पहला पत्रस की पत्री एक अध्याय उसके तीन पद में इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है धन्यवाद, अर्थात परमेश्वर की स्तुति हो। नए नियम में यह शब्द मनुष्य के लिए काम में नहीं लिया गया है। परमेश्वर मनुष्य की स्तुति नहीं करता है, मनुष्य को परमेश्वर की स्तुति करना है, क्योंकि वह पिता है। हमारी संस्कृति में कभी कभी पिता भी पुत्र की स्तुति करता है, पुत्र पिता की स्तुति नहीं करता। लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता। जी हाँ, वह हमारे प्रभु यीशु का पिता है अद्वितीय रीति से। आपको स्मरण होगा कि पुनरुत्थान के दिन की सुबह प्रभु यीशु ने मरियम मगदलीनी से इस अंतर का उल्लेख किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। वह प्रभु यीशु मसीह का पिता है, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर में उसका स्थान है, वे बराबर हैं। हम उसे पिता नहीं कहते, केवल पत्रस के कहे अनुसार कि उसने हमें नया जन्म दिया है। यह जन्म पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म है। आगे कहता है, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमें जीवित आशा है, यह आशा प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के सत्य पर आधारित है, क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर के आत्मा द्वारा फिर जी उठाया गया और यह पवित्र आत्मा का एक और संदर्भ भी है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यह त्रिएक परमेश्वर का स्तुति गान है, क्योंकि हमारा नया जन्म हुआ है, जैसा हम पद 23 में देखेंगे, जहां पर लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि हमारी जीवित आशा प्रभु यीशु के लहू पर निर्भर है। यदि देह जीवित है तो उसमें रक्त प्रवाह होना आवश्यक है। हमें आज जीवित आशा प्राप्त है क्योंकि प्रभु यीशु का लहू बहाया गया है। वह इसलिए मरा कि आप और मैं जीवित रहें, जिएं, क्योंकि उसने हमारा दंड चुकाया है। प्रभु यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। पत्रस प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को विशेष महत्व देता है। पिंतिकोस्त के दिन वरन अपने सब उपदेशों में पत्रस प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को केंद्र में रखता था। उसके कहने का अर्थ था, आज तुम जो कुछ देखते हो वह इसलिए है कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया था वह मृतकों में से जी उठा है। और अपनी पत्रियों में भी वह पाठकों को प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से जोड़कर रखता है। पौलुस भी ऐसा ही कहता है। वह कहता है कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया और मारा गया और हमें धर्मी ठहरने के लिए फिर जी उठा, कि हम मसीह में हों तथा उस प्रिय में ग्रहण योग्य होकर परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो पाएं। मेरे प्रियो, वह हम में से पाप ही नहीं हटाता, वह हमें अपनी धार्मिकता भी प्रदान करता है। हम परमेश्वर के समक्ष प्रभु यीशु के धार्मिकता में खड़े होते हैं। पत्रस हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए पूर्व काल में क्या किया है और अब वह भविष्य के बारे में बताएगा। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं, पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद में। यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। मेरे मित्रों, यहाँ पर लिखा है एक अविनाशी मीरास, उसका किसी प्रकार से नाश ना होगा, न उसमें काई लगेगी, न कीड़े खाएंगे, न आग भस्म कर पाएगी। तब हम आगे देखते हैं, निर्मल, वह अशुद्ध नहीं की जा सकती है और न ही अवैध रूप से उसे प्राप्त की जाती है। लिखा है अजर, यह मीरास ऐसी नहीं कि एक दिन उसका मूल्य समाप्त हो जाए। तब हम देखते हैं, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, अर्थात वह सुरक्षित है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे लिए उसकी रक्षा करते हैं। इससे अधिक सुरक्षित स्थान और कहीं नहीं होगा। एक बार एक धनवान मनुष्य के पास बहुत ही वैभवशाली मकान था। उसने वह मकान किसी और को दे दिया था, परंतु जिस रात वह मरा उसी रात वह मकान जलकर राख हो गया। उसके उत्तराधिकारी को केवल राख ही मिली। मेरे मित्रों, हम विश्वासियों की मीरास अविनाशी है, या आशा करने के लिए एक अद्भुत बात है। यदि हम स्मरण रखें कि पत्रस यहूदी मत से आए विश्वासियों के लिए यह पत्र लिख रहा है, तो हम इसके महत्व को समझेंगे, क्योंकि वे अपने मसीही विश्वास के लिए कष्ट उठा रहे थे। उन्हें विवश किया गया था कि वे अपनी सारी धन संपदा का त्याग करें और पलायन करें। उनके पूर्वजों को मिस्र देश से निकाला गया था, उन्हें जंगल में सुरक्षित रखा गया था, परंतु उन्हें प्रतिज्ञा के देश की आशा थी। उन्होंने सृजनहार परमेश्वर और मिस्र से उन्हें मुक्ति दिलाने वाले उद्धारकर्ता की स्तुति की, परंतु वे विश्वासी जिन्हें पत्रस पत्र लिख रहा है और हम भी प्रभु यीशु के पिता, नई सृष्टि के कर्ता और आत्मिक मुक्ति के परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वह हमें एक जीवित और अविनाशी आशा प्रदान करता है। उसने हमें जीवनदायक पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म दिया है और उसके साथ ही हमारे लिए भी मीरास रखी है। यह मीरास पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में रखी है। यह मीरास अविनाशी निर्मल है और बैरी द्वारा छीनी नहीं जा सकती। किसी ने एक कविता लिखी है जो इस प्रकार है, यह सदैव नहीं रहेगी, कभी नाश ना होगी, रात नहीं आती है, सदा दिन रहेगा। वह मेरे मन को वैसा हर्षित करती है जिसका वर्णन नहीं हो सकता, कि वह देश जहां कुछ भी पुराना नहीं होता। दुर्भाग्य से आज हमारा ध्यान वर्तमान में ऐसा उलझा हुआ है कि हमारा ध्यान भविष्य की ओर नहीं जाता। जो हमारे मकान हैं, घर हैं, नाश हो जाएंगे, परंतु उस घर की हम चिंता नहीं करते जहां पर हम सदैव रहने पाएंगे। पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। कहता है जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से की जाती है। परमेश्वर का रक्षक सामर्थ है। रक्षा यहां एक अति मन भावन शब्द है। जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से की जाती है। मेरे प्रियो, एक मनुष्य की अंतिम इच्छा थी कि उसकी कब्र पर एक ही शब्द लिखा जाए और वह शब्द इसी पद का था, रक्षा। उसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में प्रेरित पौलुस यही कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मेरे मित्रों, क्या आप सोचते हैं कि वह आपकी रक्षा करेगा? मैं तो सुन सुनकर उब चुका हूं कि हम यह करके वह करके सिद्ध जन बन सकते हैं। क्या वे उस सितारे तक पहुंच गए हैं जहां हम नहीं पहुंच पाए हैं? वे पूछते हैं, क्या आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है? क्या आप संतुष्ट हैं? मैं कहता हूं, नहीं। मैं तो मसीह यीशु में ऊंची बुलाहट की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने सिद्धि प्राप्त नहीं की है। मेरे प्रियो, कुछ लोगों को मैं कहना चाहता हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आप मसीही जीवन नहीं जी सकते। आप शायद मन में एक प्रश्न लिए हैं, क्या आप सच कह रहे हैं? जी हां, मुझे आपसे एक भी बात झूठी नहीं कहनी है। मुझे आप एक भी बाइबल पद बता दें जहां परमेश्वर आपसे मसीही जीवन जीने के लिए कहता है। मुझ में पुराना स्वभाव है और वह मेरे पार्थिव जीवन को नहीं छोड़ेगा। यह पुराना स्वभाव कभी कभी प्रकट होता है। मुझ में क्रोधी स्वभाव है और मैं अपनी पत्नी पर भी क्रोधित हो जाता हूं, बच्चों पर क्रोधित हो जाता हूं, जिसके लिए मुझे उससे क्षमा मांगनी पड़ती है, बच्चों से क्षमा मांगनी पड़ती है। आप में भी वह पुराना स्वभाव है। हम नियमों का पालन करके इस पुराने स्वभाव से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। क्या हम लाखों लीटर इत्र डालकर खाद की सड़ान को रोक सकते हैं? क्या उस बदबू को मिटा सकते हैं? मेरे प्रियो, आप अपने पुराने स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं। आप केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मसीही जीवन आचरण का निर्वाह कर सकते हैं। आपको यह जानना होगा कि आपकी रक्षा आज से उसके समक्ष उपस्थित होने तक परमेश्वर के सामर्थ्य से की जाती है। हम देखेंगे कि यह प्रक्रिया प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंधों द्वारा पूरी होती है। अब यह इस पत्री का एक मुख्य पद है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। विश्वासी के कष्ट और उसकी रक्षा से एकमात्र जो बात उत्पन्न होगी वह है आनंद। यह त्रिएक परमेश्वर का काम है। पिता परमेश्वर अपनी दया के आधार पर हमें आनंद देता है। वह कैसा दयावान रहा है, उसने हमें नए स्वभाव में उत्पन्न किया है, हमें जीवित आशा दी है जो प्रभु यीशु को मृतकोत्थान के द्वारा है, और भविष्य में हमारे लिए एक अद्भुत मीरास रखी है। लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो। किस बात से मगन होते हो? यह कैसी अच्छी बात है? नहीं, अनेक परीक्षाओं के कारण दुख में। यहां 2 विपरीत शब्दों को तुलना में रखा गया है, मगन होना और परीक्षाओं के कारण दुखी होना। मेरे प्रियो, पत्रस इस जीवन में दुख उठाने का कारण स्पष्ट कर रहा है। लिखा है, कुछ दिन के लिए, अर्थात अनंत काल की तुलना में कुछ समय के लिए। आज वर्तमान जीवन पर ध्यान दिया जाता है। मनोविज्ञान और भौतिकवाद कलीसिया में घर कर चुके हैं। कहा जाता है कि हमें परिपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना आवश्यक है। यदि हम पर कष्ट आए तो हमारे विश्वास में खोट है। मेरे प्रियो, कष्ट का अर्थ यह नहीं है। इतना अधिक अपने ऊपर ध्यान देकर हमें अपने महान परमेश्वर को देखना है, उस अद्भुत मीरास की ओर देखना है जो उसने हमारे लिए रखी है कि एक दिन हमें मिले। हमें दैहिक सामर्थ्य द्वारा पुराने स्वभाव से मुक्ति पाने का प्रयास त्याग देना है। जी हाँ, परमेश्वर हमारा सुधार करने का काम करता है। वही है जो हमारे मसीही जीवन को सिद्धता प्रदान करता है। हमें उन्नत बनाने की परमेश्वर की एकमात्र विधि है नाना प्रकार की परीक्षाएं। मेरे मित्रों, पिछली पुस्तकों में भी हमें यही कहा गया था। प्रभु यीशु ने कहा था कि हमें चकित नहीं होना है कि इस संसार में परीक्षाओं का सामना करना होगा। इब्रानियों की पत्री में हमने देखा था कि परमेश्वर हमें परीक्षाओं द्वारा परखता है। याकूब भी परमेश्वर द्वारा हमारे परखे जाने के विषय में चर्चा करता है। पौलुस ने भी कष्टों के बारे में बहुत कुछ कहा है। अब पत्रस भी यही कहता है, मैं जानता हूं कि परमेश्वर द्वारा हमें परीक्षाओं एवं कष्टों से उन्नत बनाने की बात करना जनमान्य नहीं है। यदि कहा जाए कि मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण है और स्वयं कुछ करके बढ़ सकता है तो उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। मेरे प्रियो, सच तो यह है कि जब तक पवित्र आत्मा हमारे मन में और जीवन में कार्य ना करे तब तक हम कुछ भी नहीं हैं। हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए है ही क्या? हमें देने के लिए उसके पास सब कुछ है। हमें सदा स्मरण रखना है कि हमारे कष्ट कुछ ही समय के हैं। 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय उसके 17 और 18 पद में पौलुस भी यही बात कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिनों की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। मेरे मित्रों, जिन बातों को हम महत्वपूर्ण समझते हैं वे वास्तव में किसी महत्व की नहीं है। अनंत काल की तुलना में वे क्षणिक एवं अस्थाई हैं, वे नाशमान हैं और अशुद्ध हो जाएंगे। इस संसार की महिमा विलोप हो जाएगी, जो हम नहीं देख सकते वह अनंत है, वही है जिसका महत्व महान है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप इस संसार में उस अनंत आशा के बारे में चिंता करते हैं या नहीं, उस मिराज की चिंता करते हैं या नहीं, परंतु आज पत्रस हमें यहां पर इस पत्री के द्वारा से बताता है कि हम इस संसार में क्षणिक हैं, हमारा यहां पर रहना अस्थाई है, हमारे लिए मिराज रखा गया है जिसकी रक्षा परमेश्वर करता है ताकि एक दिन हम उसे प्राप्त करें। मेरे प्रियो, इसके लिए मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने पुराने स्वभाव को बदलें, अपने पुराने स्वभाव को त्यागें, क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य से उस स्वभाव से छुटकारा नहीं पा सकते, और इसके लिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। यदि मुझे और आपको पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए तो पवित्र आत्मा का देने हारा प्रभु यीशु, उसके चरणों में मुझे और आपको आना है। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन क्या है, आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार के पापमय जीवन में उलझे हुए हैं, परंतु आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यही कहता है कि हम अपने स्वभाव को बदल डालें, हम नया जन्म पालें, नए व्यक्ति बन जाएं, नया व्यक्तित्व को ग्रहण कर लें, ताकि हमारे इस जीवन के द्वारा से परमेश्वर को महिमा मिले और हम उस मिराज को पा सकें। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
अगर हमको मिली।